ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नैषा तिदुःसहाच्छुन्नाम् त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोजा स्युक्तं हरिकथामृतम्। नैषा तिदुःसहाच्छुन्नाम् त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोज स्युक्तं हरिकथामृतम्। नैषा तिदुःसहाच्छुन्नाम् त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोज स्युक्तं हरिकथामृतम्।
नैषा तिदुःसहः छुन्नाम् त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखाम्भोज स्युक्तं हरिकथामृतम्।
सीधा बैठने के लिए कहा
मक्खी परेशान कर,
मक्खी तो परेशान कर रही है, सीधा बैठने है इसको बुलाइए। सुदामा सीधा बैठा ही
जी महाराज,
सीधा इरेक्ट बैठा।
ठीक है,
अरे सीधा
सीधा कुर्सी पकड़े रहिए। अब ठीक है,
मत लगाओ
ठीक।
Thank you.
संपत्ति सारा मानव समाज चर चरण करने लगा, पुनः पुनः चर चरण जो एक शरीर में लोग एक शरीर में जन्म लेकर मरने और पुनः दूसरा शरीर धारण कर फिर मृत्यु भोगने के लिए तैयार करते हैं। मृत्यु संसार वर्तमान इस जन्म मृत्यु के चक्र को रोकने के लिए कृष्ण कथा अथवा कृष्ण आनंद सिद्धांत आवश्यक है, किंतु जबकर सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप से व्यक्ति से कृष्ण कथा नहीं सुनी जाती तब तक सारे भौतिक थकान को दूर करने वाली कृष्ण कथा को अमृत करने को आनंद लिया जा सकता न ही आध्यात्मिक अस्तित्व में आनंद में जीवन हो गया जा सकता। जब हम कृष्ण भावना आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने कृष्ण कथा को अमृत का स्वागत कर लिया, वे सारी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिए हैं, किंतु जो कृष्ण या कृष्ण कथा को नहीं समझते वे कृष्ण भावना भाव जीवन को मस्तिष्क भुलाई या मन नियंत्रण मानते हैं। एक ओर जहां भक्तगण आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करते हैं वहीं पर भक्तों को यह देखकर हैरानी होती है कि भक्तों ने भौतिक आशाओं का परित्याग कर दिया है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की
महाराज परीक्षित जल त्याग करके और खाना छोड़ करके उपवास कर रहे थे। क्योंकि वे शरीर त्यागना चाहते थे, ब्राह्मण का श्राप था सातवें दिन तुमको तक्षक डसेगा, तो मृत्यु तो निश्चित थी, मृत्यु होनी थी सातवें दिन। तो महाराज परीक्षित राज छोड़ करके गंगा जी के तट पर गए, वहीं सुखताल में एक बरगद के नीचे बैठकर गंगा जी की तरफ मुख करके भगवान का ध्यान करने लगे। उसी समय संसार के समस्त बड़े बड़े ब्राह्मण ऋषि आ गए, क्योंकि उनको लालसा थी कि हम देखें भगवान का भक्त किस तरह भगवान के धाम में जाता है। परीक्षित महाराज एक बहुत बड़े भक्त हैं, सब लोगों को विश्वास था कि ये तो देह छोड़कर भगवान के धाम में जाएंगे निश्चित, इसलिए उनसे भेंट करने के लिए अंतिम समय में सब ऋषि मुनि आए। और कुछ देर के बाद उसी दिन श्रील सुखदेव गोस्वामी आए, तो उनको देख करके सारे ऋषि मुनि राजर्षि सभी खड़े हो गए। उनको एक ऊंचा आसन दिया गया, सभी मुनियों के बीच में ऐसे बैठे थे जैसे लगता था ताराओं के बीच में चंद्रमा। तो महाराज के प्रश्न सुनकर प्रथम स्कंध में वे उसका उत्तर दे रहे थे। तीन दिन प्रवचन हो चुका, महाराज परीक्षित एक आसन से बैठे ही रहे और पानी तक नहीं पिए थे, दो दो मपी। जल तक छोड़ दिए थे, पानी नहीं पिए, और फिर भी सुनते रहे अविचल आसन से। सुखदेव गोस्वामी ने मानो ऐसा कह दिया कि महाराज आप बहुत प्यासे और भूखे हैं, थोड़े देर रुक करके कथा करूंगा, आप थोड़ा स्वस्थ हो लीजिए। इसी पर आशंका करके परीक्षित महाराज कहते हैं, नई सात दुसहा छुमा तत्तोदम अपनी बाधित है, ऐसा छूत जिस यह भूख मुझे बाधित नहीं कर रही है, जबकि मैं जल तक का त्याग कर दिया हूं, प्यास भी नहीं है, भूख नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं कि ऐसा यह भूख, ठीक भूख तो लगना स्वाभाविक है, भूख लगी है लेकिन मुझे बाधित नहीं कर रही है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ऐसा छुत की का विशेषण बता रहे हैं, भूख है कैसी अति दुसहा, जो अति दुसह होती है। मेरा अनुभव है मुझे इतनी प्यास लगी थी और भूख लगी थी कि मैं मुनि के प्रति, समीक मुनि के प्रति द्वेष कर लिया, उनके आश्रम में गया, पानी मांगा, पानी नहीं मिला, मुनि ने ध्यान नहीं दिया, वास्तव में मुनि भगवान के ध्यान में मग्न थे, ये सुने नहीं। तो उसी को महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि ऐसा वह भूख है जो अति दुसह है, अति कठिन है बर्दाश्त करना। अति दुसहा, दुसहा का अर्थ है कठिन है सहना भूख को, और अति दुसहा, अति दुसह जिसको सहना बड़ा कठिन है। मुझे भूख लगी थी और मुनि के गले में सांप लपेट दिया, और इस पर मुनि कुमार ने मुझे साफ दे दिया। ऐसी भूख है मुझे अब भी है, ऐसा छूत ऐसी भूख, लेकिन माम न बाधते, मुझे बाधा नहीं दे रही है, आपकी कथा सुनने में मुझे बाधा नहीं हो रही, बैठने में भी दिक्कत नहीं है, और मैं आराम से सुन रहा हूं, क्योंकि मैं पिबंतम, मैं पी रहा हूं, वर्तमान में बोल रहे हैं, पिबंतम, मैं आपके मुख से, मुख चंद्रमा से झरते हुए अमृत को पी रहा हूं। जैसे चंद्रमा से किरणों का स्राव होता है, उन किरणों में अमृत रहता है, सारी जलन मिट जाती है, आपके मुख चंद्र से निकलते हुए कृष्ण कथा को मैं पी रहा हूं, अमृत को पी रहा हूं, हरि कथा मृतम। भगवान कृष्ण परम मनोहर हैं, वैसे ही इनकी कथा भी परम मनोहर है। मैं हरि कथा अमृत को पी रहा हूं, इसी कारण से ऐसा भूख ऐसा छूत माम न बाधते। या दूसरा भूख मुझे बाधित नहीं कर रही, क्योंकि मैं अमृत पी रहा हूं। अमृत पीने वाले को ताप नहीं पहुंच सकता है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शंकर विष पी लिए थे, तो बहुत ज्वाला उनके शरीर में थी, लेकिन बाद में समुद्र मंथन से जब चंद्रमा उत्पन्न हुए तो बंटवारा में देवताओं ने भगवान शिव को चंद्रमा को दे दिया, उसको वे धारण किए चंद्रमणि चंद्रमौली, इससे उनकी ज्वाला मिट गई। यह भूख सहने में अत्यंत कठिन है, सारे संसार में समस्त काम धंधा को बंद कर देती है। ब्रह्मचारी पढ़ना छोड़ करके कुछ खाते हैं पीते हैं तब बाद में पढ़ पाते हैं। गृहस्थ काम धंधा करते हैं लेकिन भूख लगने पर सारा काम बंद हो जाता है। इसको मारने के लिए, भूख को मारने के लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। ऑफिस बंद करके या खेती छोड़ करके भोजन बनाने लगते हैं। कुछ पीने के चक्कर में हो जाते हैं। बहुत से प्रकार के जूस और पेय पदार्थ पीने लगते हैं, तब उनकी भूख शांत होती है, तब कुछ काम करते हैं। लेकिन ऐसा यह भूख है, ऐसी है, इसको सहना कठिन है। कुछ करना ही पड़ता है भूख को और प्यास को खत्म करने के लिए। पर ऐसी दुसह भूख है हमको बाधा नहीं दे रही है। क्योंकि आपके मुख कमल से या मुख चंद्र से झरते हुए मैं अमृत को पी रहा हूं, पिबंतम शब्द से ध्वनित हो रहा है कि आप कथा को मत रोकिए, मैं पी रहा हूं। यदि कथा बंद हो जाएगी तो फिर वैसे वही भूख मुझे बाधित करेगी। अतः अमृत पिलाना बंद मत कीजिए, पिलाते रहिए। पिबंतम तन मुखाम भोज च्युतम हरि कथावत। मैं आपके मुखचंद्र से झरते हुए अमृत को पी रहा हूं। हरि कथा ही अमृत है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सारा संसार आध्यात्मिक पिपासा से और भूख से छटपटा रहा है। सारे जगत में सारे जीव दुखी हैं क्योंकि भूख लगी है। जीव वास्तव में ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश है। वह जब तक ब्रह्म से संबंध नहीं करता है उसकी प्यास मिटती नहीं है, भूख मिटती नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए संसार के समस्त धार्मिक नेता और बड़े लोग इस बात को समझने की चेष्टा करें। ये कृष्ण कथा आध्यात्मिक अमृत है, दिव्य अमृत है। इसी से जीव की भूख प्यास जा सकती है, वो तृप्त हो सकता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि संसार के लोगों को इस अमृत का पता नहीं है। यह अमृत श्रीमद् भागवतम में रखा हुआ है, केवल इसको पीना है। अगर कोई पढ़े या सुने तो उसे शांति मिलेगी, सारे संसार में शांति छा जाएगी। यद्यपि सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि विश्व शांति हो, सबको सुख मिले, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सर्वे संतु निरामया, सभी निरोग हों, मां कश्चित दुख भाग हो, किसी को कोई दुख न हो, तो इसका सबसे बड़ा उपाय है कृष्ण कथा। कृष्ण के विषय में बोलना, गाना, सुनना, उसके लिए कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस अमृत को तैयार करके रखा है श्रीमद् भागवतम में। इसी को पढ़ना है, सुनना है, गाना है। और श्रीमद् भागवतम का प्राण है कृष्ण का नाम। तो यदि कृष्ण के नाम को गाया जाए, सुना जाए, तो जीवों का दुख मिट जाएगा, शांति मिलेगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भगवान का दिव्य नाम है, इसी को सुनना चाहिए, इसी को गाना चाहिए, इसी का जप करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस की रचना किए तो कहते हैं कि इस ग्रंथ में एक बहुत बड़ी विशेषता है, यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण सत्य सार। इस ग्रंथ में बारंबार राम राम ये भगवान का नाम आया है, उदार है भगवान का नाम, उदार है परमानंद को देने वाला, परम आनंद को देने वाला, जो महादान करे उसको उदार कहते हैं। तो भगवान का नाम उदार है, आप जप करके कीर्तन करके देखिए, इससे आनंद उत्पन्न होगा, आनंद अपने आप मिलेगा। अति पावन यह अति पवित्र करने वाला है, पुराण सार समस्त पुराणों में यही सार है, वेदों में यही सार है, पुराण और श्रुति का वेद का सार है। और बहुत पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेद और वेद के अंग स्मृति ग्रंथों को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान का नाम कोई जपता है तो सारा वेद पढ़ लिया, क्योंकि वेद पढ़ने का यही फल है भगवान का नाम। इस बात को स्वयं भगवान के सामने माता देवहूति भी कहती हैं, अहो बत स्वपचोतो गरियां जिह अग्रे वर्तते नाम तुम्हें। जिस चंडाल के जिह्वा के अग्र भाग पर आपका नाम विराजता है तो तेपुष तपस्त है, वो सब प्रकार की तपस्या कर चुका है, जुहू सब प्रकार का हवन कर चुका है, वेदों में वर्णित यज्ञ कर चुका है सस्नु, और वह सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, और ब्रह्म अनुचु और ब्रह्म को बारंबार पढ़ लिया, बहुत अभिलाषा होती है कि हमें वेदों का ज्ञान हो जाए, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान हो जाए, लेकिन श्रीमद् भागवतम का सार है भगवान का नाम। इसी को गाना चाहिए, जपना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम राम। जिस कथा को सुनने पर, भगवान के नाम को सुनने पर अतिशय दुसहनीय भूख प्यास भी सही जा सकती है, बाधा नहीं देती है, तो विवेकी पुरुष को विचार करना चाहिए कि हमारी भूख या प्यास जो अनादि काल से है, शरीर बदल जाएगा, दूसरा शरीर मिलेगा, फिर भी प्यास बनी रहेगी, और भूख लगेगी, वास्तविक भूख है भगवान को पाने की, जीव को छटपटा रहा है, जैसे मछली जल से बाहर होने पर छटपटाती है, जल में ही सुखी हो सकती है, ऐसे ही हम लोग कृष्ण के अंश हैं, नित्य अंश, कृष्ण के संग ही सुखी हो सकते हैं। और कृष्ण का संग मिलेगा कृष्ण कथा द्वारा, कृष्ण नाम द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि सारा संसार आध्यात्मिक प्यास से युक्त है, तो सारे संसार में कृष्ण कथा का दान होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। कृष्ण के नाम के ध्वनि को सुन करके अमेरिका में जब नवजुवक और नवजुवती दुर्व्यसनो का त्याग कर दिए, शराब पीना, मांस खाना, पर स्त्री गमन आदि छोड़ दिए, तब कुछ लोगों ने कहा कि ये सन्यासी, ऐसी भक्ति विदान स्वामी ये ब्रेनवाशिंग कर रहा है, लोगों के ब्रेन को बदल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद पर ब्रेनवाशिंग का केस भी हुआ है। लेकिन सौभाग्य से कुछ लोगों ने इस बात को समझ गया कि ये ब्रेन वाशिंग नहीं है, वास्तव में ब्रेन की सफाई है, मस्तिष्क में कचरा भरा हुआ है शराब पीने का, मांस खाने का। तो इस विचार को धोना चाहिए, धूल गया भगवान के नाम से। और बहुत से युवक जब इस्कान में आने लगे और उन्होंने केस मुड़ा लिया, तो इससे और भी प्रचार होने लगा कि ये कोई जादू जानता है सन्यास। बताइए, इतने नौजुवक और इतने सुंदर सुंदर केस रखे थे, सब मुड़ा करके अब मिट्टी का तिलक कर रहे हैं। कभी कभी पूछते थे लोग, ये मिट्टी का पेंट क्यों लगाया? उन्हें समझाना पड़ता था बड़े नम्र भाषा में कि ये मिट्टी नहीं है, गोपी चंदन है, बहुत पवित्र। लेकिन सारी बातों को तो समझाया नहीं जा सकता था। अरे लकड़ी की माला क्यों बांधे हैं? कंठी को कहते थे। निश्चित रूप से सब लड़के पागल हो गए। कुछ माता पिता को बहका करके लोगों ने कह दिया कि ये लड़कों को खराब कर रहा है, इस पर केस कीजिए। तो अमेरिका में उस समय ये बहुत बड़ा केस हुआ प्रभुपाद जी पर। श्रील प्रभुपाद समझाए, कोर्ट में बोल रहे थे कि ये मेरा विचार नहीं है, ये वैदिक ग्रंथों में जो इंडिया में प्रचलित धर्म है, हिंदू धर्म, उसी की एक शाखा है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। बहुत प्राचीन ग्रंथ है वेद, और उसका सार है भगवद गीता। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि यह भगवद गीता के द्वारा सपोर्ट है, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, उन्होंने ये कीर्तन करने की विधि सिखाया वेदों का उदाहरण देकर के। हरे नाम हरे नाम व केवलम खड़ो नाश्ते व नाश्ते व नाश्ते व गतिगम। यह झगड़ा वाद विवाद का युग है, पाखंड का रूप युग है। इस युग में केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एकमात्र निस्तार का उपाय है, और कोई उपाय नहीं। कुछ भारतीय वकालत करने वाले अमेरिका में रहते थे, वे लोग प्रभुपाद जी की बात को पूरा सपोर्ट किए। तो प्रभुपाद जी पर मुकदमा खत्म हुआ। प्रसिद्ध प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित वैष्णव सिद्धांत बढ़ता ही गया, इस्कान की शाखाएं बढ़ती गई, और आज सब देशों में है। जो महाराज परीक्षित के लिए सत्य है, वो सबके लिए सत्य। सत्य किसी भी काल में किसी परिस्थिति से बाधित नहीं होता। कई जगह मैं पढ़ा हूं, लिखा हुआ है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तू ही सच्चा है और तेरा नाम सच्चा है। तू का अर्थ है यहां भगवान, हे भगवान आप ही सत्य हैं, और भगवान का मतलब कृष्ण, कृष्णस तो भगवान। पर लिखने वाले इस बात को नहीं समझ पाते, तू का वो कुछ अर्थ ही नहीं समझ। एक तू सच्चा, अब तू का अर्थ वे निराकार समझते हैं, मतलब कोई है ही नहीं, निराकार का यही मतलब है ना, कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो जो है ही नहीं वो भगवान का कैसे हो सकता है। राम सच्चा, राम का नाम सच्चा ऐसे लिखना चाहिए। लिखने वाले को और पढ़ने वाले को भी बहुत लाभ होगा, राम का नाम आएगा इसके मन में, इसके जीव पर। श्रील प्रभुपाद ने सारे जगत में भगवान की स्थापना किया, भगवान का मूर्ति बैठाया, सच्चा परिचय दिया भगवान का। और भगवान के नाम का प्रचार, एक बार श्रील प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, वे बोल रहे थे भगवान सारी सृष्टि के कारण है, सारे जगत का निर्माण किया, तो पूछ दिया व्यक्ति एक प्रश्न कि जब सारे जगत को भगवान बनाए हैं तो हु मेड गॉड, भगवान को कौन बनाया। प्रभुपाद जी कहे पहले भगवान के बारे में सुनो, वे कौन है। भगवान वो वैसे हैं, उनको स्वयंभू कहते हैं, वो स्वयं हैं आत्मभू, उनको कोई बनाया नहीं, वे सबके कारण हैं, सबको वे बनाए हैं लेकिन उनको कोई नहीं बनाया, अजन्मा है। तो फिर वो व्यक्ति पूछा कि आप कहते हैं कि मंदिर में भगवान हैं, तो मंदिर में मूर्ति को आप भगवान कहते हैं, तो मूर्ति को तो बनाया गया है ना, कोई कारीगर बनाया, हाथ पैर बनाया, आंख बनाया, तो ये मूर्ति कैसे भगवान है। प्रभुपाद जी कहे मूर्ति किस चीज से बनी है, कहता है पत्थर से। पत्थर कौन बनाया, पत्थर भी भगवान बनाया है ना, कोई मनुष्य नहीं बनाया, किसी मनुष्य के शक्ति में पत्थर बना सके, श्री भगवान कभी कभी अपने को प्रकट करते हैं पत्थर में, काष्ठ में, पेंटिंग में। तो वे स्वयं पत्थर बनाए हैं, काष्ठ बनाए हैं और उसी में कभी प्रकट होते हैं। कलाकार पढ़ता है, सुनता है शास्त्रों में कि भगवान सांवले हैं, और चार भुजाएं हैं, कभी कभी दो भुजा वाले भी हो जाते हैं। भगवान हाथ में बांसुरी धारण करते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी लोग पूछते थे, हु इज गर्ल, कृष्ण के साथ जो खड़ी है ये गर्ल कौन है। बहुत बात समझानी पड़ती, ये भगवान की प्रिया है। तो प्रिया का वे मतलब नहीं समझते थे, तो प्रभुपाद जी कह देते थे वो गर्ल फ्रेंड है। इस बात से समझ जाते थे। वो गर्ल फ्रेंड क्यों रखे हैं भगवान, तब श्रील प्रभुपाद जी कहते थे गर्ल भी स्वयं कृष्ण ही है, वही अपने को प्रकट किए हैं राधा रानी के रूप में। ये भगवान की हलादनी शक्ति है, नित्य शक्ति, भगवान को सुखी करने के लिए। बहुत बातें समझानी पड़ती थी। यहां तो आसान है कथा करना, भारतवर्ष में श्रद्धा है लोगों, हजारों लोग सुनते रहते हैं। इस समय वृंदावन में सावन भादो के महीने में कम से कम 50 जगह श्रीमद् भागवतम होता है, और प्रत्येक भागवतम में सैकड़ों लोग सुनते हैं जमीन पर बैठकर। श्रद्धा है, कठिनाई सह करके सुनते रहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका में जब बोलते थे तो बहुत प्रश्न होते रहते थे, बहुत कठिन था उत्तर देना, लेकिन फिर भी सर्वज्ञ श्रील प्रभुपाद जी बड़े आसानी से उत्तर देते थे। हमने तो यह अवसर नहीं दिया यहां प्रश्न पूछने का, क्योंकि प्रश्न पूछने में सबकी समझ एक समान है नहीं, कई बार अपटांग प्रश्न कर देते हैं, हमको डिस्टर्ब होता है। अब समय बर्बाद होता है, समय ऐसे ही कम है, उस पर भी मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसीलिए प्रश्न का अवसर नहीं दिया, आप क्षमा कीजिए। पर ये बोल रहा था कि इस देश का महान गौरव है कि यहाँ लोगों में श्रद्धा भरी हुई है, श्रद्धा शताब्दियों से है। प्रत्येक वर्ष सावन आता है, भादो आता है, जन्माष्टमी मनाई जाती है, इस अवसर पर कथाएं होती हैं और हर एक वर्ष वैसे ही भीड़ होती है, लोग सुनते हैं। वे बहुत टीका टिप्पणी नहीं करते हैं और प्रश्न भी नहीं पूछते हैं। बहुत फालतू प्रश्न कभी कभी होता है, जीव कहाँ से आया है? अरे कहीं से आया है। ये दिखा गया है कि भजन करो करो भगवान के धाम में जाओगे, पर लोग इसी पर पड़े रहते हैं, नहीं कहाँ से आया, कहाँ से आया। ये सब बेकार प्रश्न है। कहाँ जाएगा, कहाँ जाना चाहिए, इसका उत्तर साफ लिखा हुआ है भगवद गीता में भी। न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जीव मनुष्य यदि मेरी भक्ति करेगा, मुझ में मन लगाएगा, मुझे प्रणाम करेगा, तो निश्चित ये देह छोड़ करके मुझे प्राप्त करे, मेरे धाम में आए। तो कहाँ जाना है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि जीवन तमोगुण में बीत गया तो निश्चित नरक की प्राप्ति होगी। भगवान ने स्वयं बताया है, और सत्वगुण में जीवन रहेगा, सत्वगुणी कार्य करेंगे तो ऊपर जाएंगे, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्व स्था, स्वर्ग लोक में या उच्च लोकों में जन्म होगा। भगवान के धाम में जाएंगे ऊर्ध्वम, मध्य तिष्ठन तिराज सह, और रजोगुण में रहेंगे केवल खाने कमाने में। तो मध्य में रहेंगे, इस पृथ्वी लोक पर जन्म होगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, जघन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामस, जघन्य गुण तमोगुण में रहेंगे, हमेशा शराब पीने में, केवल सोने में, स्त्री संगादि में रहेंगे, तो अध गच्छन्ति निम्न जोनियों में जन्म होगा, स्थावर योनि में या पशु पक्षी की योनि में। यदि अति तमोगुण में रह गए तो निश्चित नरक में गिरेंगे। ये सब बातें भागवत में लिखी हुई हैं। भागवत में एक प्रसंग में बताया गया है, एक बार एक ब्राह्मण जो बहुत वेद पढ़े थे स्वधर्म किए थे, लेकिन एक वेश्या के संग से उनमें दुराचार आ गया। एक बार अपने पिता की आज्ञा से वे वन में गए। वन से कलेक्शन करके फूल फल समिधा हवन करने की लकड़ी और ले करके आ रहे थे। तब तक रास्ते में उन्होंने देखा एक शूद्र, एक थर्ड क्लास का व्यक्ति एक स्त्री के साथ लिपटा हुआ था। गा रहा था कुछ, वो स्त्री भी गा रही थी। उसका उसके शरीर पर अंगराग लगा हुआ था, हल्दी लगी हुई थी। वो उस स्त्री के भुजाओं में था, स्त्री के साथ कुछ चेष्टा कर रहा था। उस ब्राह्मण ने प्रयास किया कि हम न देखें, लेकिन आंखों पर कंट्रोल नहीं रहा, देखता रहा। देखते देखते उसके मन में आया कि ये सूर्य बहुत सुखी है। उसने तुरंत पता लिया उस स्त्री का, और लौटा घर, अपने पिता को दे दिया पूजन की सामग्री, पर मन वहीं अटक गया था। वो चिंतन करता रहा उस वेश्या का। वो जबरदस्ती धन दे करके उस वेश्या को राजी कर दिया। बहुत धनी ब्राह्मण था। उसके पिताजी जब परलोक सिधारे तब वेश्या को लाया अपने घर। और उसी में अपना सारा धन लगा दिया। उसके इच्छा के अनुसार ड्रेस खरीदने में, और वह शराब पीती थी, शराब पिलाने में, गहना खरीदने में, सब प्रकार से उसको संतुष्ट करने लगा। उसी में उसका मन लगा। और भी वृत्ति थी उसकी। गृहताम वृत्ति मा स्थित, गृहित वृत्ति में लगा हुआ, निंदनीय वृत्ति, जुआ खेलना, बंदी बंदी बना करके लोगों से पैसा लेता था। और कितवई लोगों से बहुत धूर्तता करता, पैसा मांग लेता था और उधार कहता था कि मैं समय पर दे दूंगा, मूल सहित दे दूंगा, लेकिन कभी नहीं देता था। इस तरह पाप करते हुए उसके जीवन का 85 साल निकल गया। उस वेश्या से उसको 10 पुत्र हुए। अंतिम पुत्र का नाम सौभाग्यवश उसने नारायण रख लिया, तो नारायण नामक पुत्र में उसकी बहुत ममता थी, बहुत स्नेह था। अतः बुढ़ापे में खाते पीते समय, सोते समय वो कहा करता था, नारायण खाया कि नहीं, नारायण पिया कि नहीं, नारायण को बुखार आया है क्या। उस वेश्या से कभी कभी कहता था, नारायण को ठीक से पढ़ाओ। दोनों दंपति का बहुत प्रेम था उस बच्चे से, तो नारायण नाम लेने की आदत हो गई थी। चूंकि प्यारे बच्चे का प्यारा नाम नारायण था, अंत में उसकी मृत्यु का समय आया। 88 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु जब हुआ तब उसको लेने के लिए जमराज के भयंकर दूत 3 आए। उन दूतों को देख करके वो घबरा गया, और उसका बेटा कहीं खेल रहा था पास में, उसने स्नेह से प्रेम से पुकारा, नारायण आया, हे नारायण आओ, नारायण आओ। बहुत जोर लगा करके बोला, यदि प्लुत स्वर उसकी वाणी अच्छे से नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी बोला, नारायण आओ। जमराज के दूत उसको पकड़ लिए थे नरक में ले जाने के लिए। उस दशा में उसने पुकारा, नारायण आओ। नारायण आओ। संस्कृत में शब्द दिया गया है भागवत में, नारायण आयो, आयो मतलब आओ। इतना सुनते हैं भगवान के पार्षद जो सब जगह जाते हैं अलक्षित, वे 4 प्रकट हो गए वैकुंठ के पार्षद। भगवान के पार्षद का शरीर दिव्य होता है और वे बहुत अद्भुत वस्त्र पहनते हैं। 4 हाथ होता है, 4 भुजा धारण किए हुए, 7 शरीर पीताम्बर पहने हुए, मुकुट लगाए हुए, और 4 हाथ में 4 प्रकार के आयुध लिए थे, गदा, शंख, चक्र इत्यादि। हमें पहुंचते अजामिल के पास कहे, डरो मत डरो मत, इन जमदूतों से डरो मत डरो मत। आ गए सहसा आ गए, जमराज के दूत जो अजामिल को खींच रहे थे गले में रस्सी बांध करके, भगवान के दूतों ने कहा तुम लोग हटो, इस धर्मात्मा को क्यों बांधे। वे लोग बहस किए, कहे नहीं ये नरक मिलने जाएंगे हम इसको, चंद्रराज जी हम लोगों को भेजे हैं, आप लोग कौन हैं रुकने वाले। केस को रोक रहे हैं कि भगवान के पार्षदों ने कहा ये अधार्मिक नहीं है, ये परम धार्मिक है। इसको तुम हाथ से छुओ मत, दूर हो जाओ, रस्सी खोलो, भगवान के पार्षद गदा तान रहे थे, चक्र दिखा रहे थे, तो जमराज के दूत चक्र पका गए और हट गए, अजामिल को छोड़ करके। कुछ दूरी पर खड़े होकर के कहने लगे आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे धार्मिक है, ये तो बहुत बड़ा पापी है, उसके पापों की कथा लोग सुनाए। जमराज के दूत हम ले जाएंगे इसको नरक में, नरक में ले जाने से ये शुद्ध हो जाएगा पीटने से। तो भगवान के पार्षदों ने कहा इस पापी था लेकिन पाप खत्म हो गया है, कैसे। भगवान के पार्षदों ने कहा इसने प्रायश्चित किया, जमराज के दूत ने कहा कि क्या प्रायश्चित किया, भगवान के पार्षदों ने कहा भगवान का नाम लिया। वे लोग कह रहे थे कब नाम लिया, किस दिन जप किया है। कोई प्रायश्चित नहीं किया है, न किसी को दान दिया, न तीर्थ स्नान किया, न वेद पढ़ा, तो क्या उपाय किया, प्रायश्चित क्या हो। तो भगवान के भक्तों ने कहा कि देखिए पाप नाश के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं श्रुति में, पुराण में, कई ग्रंथों में बताया गया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम लेना। जमराज के दूत ने कहा हम लोगों को देख करके ये डर करके अपने बेटा को पुकारा, ये भगवान का नाम नहीं लिया है। भगवान के पार्षदों ने कहा भले ही पुत्र का नाम लिया लेकिन वास्तव में भगवान का नाम है नारायण। जैसे अमृत को कोई साधारण पेय समझ कर पी जाए तो अमर होगा ही, उसका रोग मिटेगा ही, ऐसे ही भगवान के नाम को भाव से कुभाव से कैसे भी ले, अनजान में ले, तो उसका पाप कट जाएगा। अग्नि के गुण धर्म को न जान करके कोई अग्नि का स्पर्श करे, अग्नि जलाया जाए, ऐसे ही भगवान के नाम को भगवान का नाम न समझ करके साधारण अक्षर समझ करके कोई ले तो उसका पाप निश्चित ध्वस्त हो जाए। इसी तरह से इसने पुत्र का नाम लिया है, लेकिन भगवान का नाम नारायण है, वो आ गया मुख पर। इसके एक जन्म का पाप आप लोग गिना रहे हैं, इसके करोड़ों जन्म का पाप समाप्त हो गया। कोटि जन्म का पाप समाप्त हो गया। तो जमुना जी दुख कर बस इतने से भगवान के भक्तों ने कहा कि बस इतने से एक नाम लेने से इतने नहीं बा यहो न अघम स्या दघनेश करता हूं। अघ का विनाशक भगवान का नाम इसने दिया है, तो एक बार के उच्चारण से ही इतने नहीं हो इतने से ही कोटि जन्म महंसाम कोटि जन्म का पाप नष्ट हो। इसमें कोई पाप नहीं है, और तुम लोग अगर जीवन की रक्षा चाहते हो तो इसको छोड़ो भागो। जमराज के दूत अब क्या करें, भगवान के पार्षद डांट रहे थे और अजामिल को कह रहे थे कि निष्पाप महात्मा है, ऐसे महात्मा के गले में रस्सी बांध दिया ये भी बहुत अपराध है, इसलिए रस्सी लोट खुद छोड़ करके भाग गए। इनको डर हो गया कि भगवान के पार्षद हमको मारेंगे। उनको पता भी नहीं था कि ये भगवान के यहां से आए हैं, बैकुंठ से आए हैं। जाकर के जमराज जी से शिकायत की कि हम लोग आपकी आज्ञा से उस ब्राह्मण को लेने गए थे, लेकिन चार अद्भुत सिद्ध देवता आकर के छुड़ा दिए। स्वामी आप चारों को पकड़वाइए, दंड दीजिए, आपकी आज्ञा तो ये लोग माने नहीं, बेहद कर दिए। आपका दिया हुआ पास जमपास भी काट दिए। जमराज ने पूछा क्या बात हो गई, तब जमदूतों ने कहा कि वो केवल नारायण शब्द बोला, इसी पर चारों धमक गए आ गए। तब जमराज समझ गए भगवान के पार्षद आकर के छुड़ा लेंगे। इस तरह से भगवान नाम की महिमा है। भगवान का नाम जो लेने से महापापी अजामिल जमपाश से मुक्त हो गया और कुछ दिनों जीवित रहा। 15 वर्ष और भगवान के नाम की महिमा देखा था, सुना था, अपने आंख से देख लिया, तो हरिद्वार में आकर के एक मंदिर में ठहर करके भगवान का नाम लेता था। और अंत में उसका शरीर गया गंगा जी में, गंगा में स्नान कर रहा था और भगवान का नाम लेते हुए उसने शरीर छोड़ दिया। तो शरीर छोड़ करके फिर भगवान के पार्षदों के साथ गया जहां भगवान रहते हैं। लय यत्र श्रिय पति, जहां श्रीपति लक्ष्मीपति रहते हैं वहां चला गया। यह सच्चा इतिहास है। इसको सुन करके भगवान के नाम में श्रद्धा बढ़ानी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। नाम की महिमा में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इस कलयुग में यही एकमात्र साधन है, और तो कुछ हो भी नहीं सकता, होगा भी तो उसमें कोई दम नहीं है। केवल भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। इसी को जपना चाहिए, इसी को गाना चाहिए, सुनना चाहिए। जय श्री प्रभुपाद।